ओम शांति। अव्यक्त वाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 24वां पॉइंट है, जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? उस समय दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पार्ट था, वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पार्ट पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। बाबा कहते हैं, जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है। बाबा पूछते हैं बच्चों को कि तुम भाषण कर सकते हो तो मेरा मुरली चलाना मुश्किल है क्या? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे ज्ञान को एक एंगल से ना देखें, एक शब्द के अर्थ अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में अनेक निकलते हैं। प्रोनंसिएशन एक ही होता है पर अर्थ अलग अलग निकलते हैं, उसकी शायद स्पेलिंग अलग अलग होती है। समझ की बात है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, यह ड्रामा है, पार्ट है, एक दिशा से एक एंगल से तुम देखना नहीं किसी भी बात को। तुम जिसे पूरब समझते हो, किसी और के लिए वो कुछ और दिशा है। समझ की बात है। इस ड्रामा में किसी एक बिंदु को केंद्र बिंदु नहीं समझा जा सकता। तुम जहां खड़े हो वह केंद्र बिंदु भी है और सर्कमफेरेंस भी है, परिघ भी है सर्कल का। तुम क्या समझोगे कि वो क्या है? तुम एक अर्थ नहीं निकालो, उसे ध्यान से समझो और चलो। बच्चे बहुत बार एक ही अर्थ में अटक जाते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। किसी भी बात को एक दिशा से नहीं पकड़ना है। यह कुछ भी तुम पकड़ नहीं सकते। अभी इस घड़ी जो तुम कहते हो कि यह सही है, कुछ समय पहले वो गलत था और कुछ समय के बाद भी वो गलत ठहरेगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए किसी भी बात को तुम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यही ही सही है। यह सही कुछ नहीं है और गलत भी कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं, सही भी कुछ नहीं और गलत भी कुछ नहीं है, बस ड्रामा है। तुम जिस वर्तमान काल में खड़े हो, भूतकाल से इसे देखा जाए तो यह कल्पना लगेगी, और भविष्य काल से इसे देखा जाए तो ये बाबा कहते अज्ञान लगेगा, क्योंकि भविष्य क्या काल तो ज्ञानियों का युग है, एडवांस्ड युग है। इसे अज्ञान ही कहा जाएगा भविष्य काल से। समझ की बात है। तुम तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए, तीनों लोकों को ध्यान में रखते हुए हर बात को समझने की कोशिश करो, हर बात को। किसी ने कहा यही सत्य है, तुम उसे तुरंत सत्य नहीं मानना, तुम उसे अनुभव करना। बाबा भी यही कहते हैं, ज्ञान को मानना नहीं, ज्ञान को समझना, समझकर अनुभव करना, फिर देखो क्या होता है। इस बात को ध्यान से समझिए, यह अपडेट हमेशा चलता है, यह कोई भी वर्जन फिक्स नहीं है, हर वर्जन को अपडेट किया जाता है। ये ड्रामा ही ऐसा है, जैसे टेक्नोलॉजी का युग है तो यहाँ हर टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है जब उसके सामने नहीं आती है। अपडेट हर किसी का मिलेगा यहाँ आपको, इसलिए तुम किसी बात को पकड़ के नहीं रखना, नुकसान तुम्हारा होगा। एक समय में, इस युग में, इस विज्ञान में फोन कल्पना थी, आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँचा है। आवाज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना ये मैजिक था, आज आवाज़ के साथ चित्र भी पहुँच रहा है। तो जहाँ से मन पास से इसे देखा गया, तो जिन्होंने देखा, जिन्होंने ये कल्पना की, उन्हें पागल करार दिया गया, और अभी वही सत्यता है। इंटरनेट का युग है, हर चीज़ ऑनलाइन चलती है। भूतकाल से ये कल्पना है देखी तो, और भविष्यकाल से इसे देखा तो ये अज्ञान है, क्योंकि भविष्यकाल इससे भी एडवांस्ड है, जो थॉट से चलेगा। अभी मैकेनिकली चलाना पड़ता है, भविष्यकाल में विचारों से सब कुछ चलेगा। इसलिए तुम किसी एक बात को फिक्स मत करो, हमेशा ध्यान में रखना, नया वर्जन आता रहेगा, अपडेट आता रहेगा, पकड़ के नहीं बैठना, नुकसान तुम्हारा होगा। फिर कहोगे हमने समझा ही नहीं। समझ की बात है। बाबा ने साकार तन द्वारा पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा के, किसी को पता था कि और भी पाठ चलेगा बाबा का? किसी को नहीं पता था। बस इस बात को ध्यान में रखना, सतयुग लाना बाप का काम है, किस रूप से लाएगा ड्रामा जाने, बाप जाने। तुम बस पकड़ के नहीं बैठना। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, जहां जरूरत है मैं बच्चे में प्रवेश होके ज्ञान देके मुरली चला के चला जाता हूं। ना बाप आता है, ज्ञान देना किसी मनुष्य का काम नहीं है। जो पूर्णता ज्ञानी है वही सिखा सकता है, जो खुद सीख रहा है वो क्या सिखाएगा, जो सीख रहा है वो नहीं सिखा सकता, बाबा कहते हैं। समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना वो कहाँ से भी आ रहा, बाप का ही काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य नहीं देगा ये ज्ञान, मनुष्य के पास ज्ञान है नहीं। तो जैसे जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। बाबा खुद कहता है साकार वाणियों में, जहाँ जरूरत है मैं प्रवेश होकर मुरली चलाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। बहुत से बच्चे हैं ऐसे, बाबा कहते हैं, जो कहते हैं कि मैंने क्लास नहीं ली, मैंने मुरली नहीं चलाई, मैंने अनुभव किया कि बाबा मेरे तन में आए और बाबा ने मुरली चलाई। पर सुनने वाले बच्चे कहते, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बाबा तुम्हारे तन में आए, तो क्या मुरली के महावाक्य झूठ है कि मैं किसी भी तन में आके मुरली चला के जाता हूँ। वो बच्चा बड़ी विनम्रता से कह रहा है कि बाप बैठा है, पर अज्ञानी बच्चे इसे समझ नहीं पाएंगे। अज्ञानी बच्चे तो ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी के तन में बैठे हुए बाप पर भी संशय उठाएंगे कि बाप है या कोई और शक्ति बैठी है। ये अज्ञानी बच्चों का काम है। ज्ञानी बच्चे तो हर जगह बाप को देखेंगे। ऐसा ज्ञान जो तुमने आज तक किसी से नहीं सुना है, ऐसी मुरली जो आज तक तुमने किसी से नहीं सुनाई सुनी है, वो बाप ही चलाता है। समझ की बातें हैं, सभी बच्चे नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानेंगे, मैं कैसा हूँ सभी के बस की बात नहीं है बाप को पहचानना, बाकी तो चलते रहेंगे। बाप की पहचान ज्ञान से है। बाप इस सृष्टि में आके कभी कोई चमत्कार नहीं करता और करेगा भी नहीं, सिर्फ ऐसा ज्ञान देगा जो किसी ने दिया नहीं है। ये बाप का काम है। बाप का ज्ञान कहीं वेद शास्त्रों में नहीं मिलेगा, कहीं पुराणों में नहीं मिलेगा, किसी के ज्ञान में नहीं मिलेगा, उसका रेफरेंस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जिसका रेफरेंस कहीं पर नहीं है वो बाप का ज्ञान है, जिसका रेफरेंस है वो इस सृष्टि का ज्ञान है। फिर संत आत्माएं, महात्माएं, मनुष्य आत्माएं, जिस किसी के द्वारा भी लिखा गया है, देव आत्माएं जो भी है, फरिश्ते हैं जो भी लिखने वाले, बाप का ज्ञान इस सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ की बात है, यही पहचान है बाप के ज्ञान की। समझने वाले समझ जाए और समझ कर चले। बाबा कहते एक तन क्यों, मैं हजारों तन में आके मुरली चला के चला जाता हूं, हजारों तन में एक समय पर। ये बच्चों के बस की बात नहीं है मुरली चलाना, दुनिया के हिसाब से कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस मुरली से बच्चों का उद्धार होता है वो बाप के अलावा कोई और नहीं चला सकता। समझ की बात है, पर कोई कोई बच्चे पकड़ के रखते किसी बात को। बाबा कहते मैंने पहले अंगूठा कहा, फिर बिंदी कहा, फिर सितारा कहा। अपडेट हो रहा है ना वर्जन, तुम अपडेट क्यों नहीं करवाना चाहते तुम्हारे सॉफ्टवेयर को? अपडेट नहीं कराओगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम सिस्टम से बाहर हो जाओगे क्योंकि तुमने अपडेट नहीं कराया है, तुम्हारा डिवाइस चलना बंद हो जाएगा, इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाएगा, उसके ऊपर वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए समय के साथ चलो, समय के साथ चलो। बाबा कहते क्यों अंगूठे को याद नहीं करते, फिर बिंदी या सितारे को क्यों याद करते हो? समझ की बात है, इसलिए समय के साथ चलो। समय बदलता जा रहा है, वैसे बाप ज्ञान देता जा रहा है। ज्ञान की अथॉरिटी सिर्फ बाप के पास है और किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। समझने वाले समझ जाए। स्वयं को समझने के लिए भी ज्ञान लगता है और बाप को समझने के लिए भी महाज्ञान लगता है। सिंपल सा ज्ञान नहीं, महाज्ञान लगता है। बाप को समझने के लिए। एक ही ज्ञान है समर्पण। तुम अपनी बुद्धि मत चलाओ, एक तो तुम्हारी बुद्धि माया के पास है, तुम्हारा मन माया के पास है, तुम्हारे संस्कार माया भी है। अभी इन तीनों से, मन बुद्धि संस्कार से जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, आउटपुट क्या होगा इसका, माया भी ही होगा। इसलिए इन सारी बातों में मत जाओ, अपनी उन्नति के बारे में सोचो, अपने को श्रेष्ठ बनाओ। और बच्चे क्या करते हैं, अपने को श्रेष्ठ बनाना छोड़कर इन बातों में चले जाते हैं, फिर जहां है वहां से भी गिर जाते हैं। तुम आत्मिक स्थिति के बारे में सोचो, अपनी स्थिति बेहतर बनाओ। क्या करें कि हमारी आत्मिक स्थिति और ऊंची हो जाएगी, योग श्रेष्ठ होगा, ऊंचा होगा, यह चिंतन करो। कैसे करें कि मुरली हम 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ें सारे दिन भर में, ड्रिल हम 8 बार क्यों, 108 बार करें, इसका चिंतन करो। कैसे समय निकाले कि हम विश्व को सकाश दें, इसके बारे में सोचो। बाकी भटकने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक है, उसमें मत जाओ। ये जितने विषय हैं ना, उनमें विकार है, इसलिए विषय विकार नाम किसी किसी भाषा में कॉमन आता है। विकारों को विषय विकार कहा जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे, इन्हें विषय विकार कहा जाता है। इसलिए तुम इन सब्जेक्ट्स में, विषयों में जाओ नहीं तो विकार आएंगे नहीं। तुम इतने ही अपने पास सब्जेक्ट्स रखो, मैं आत्मा, मेरा बाबा और ये ड्रामा, ये सृष्टि चक्र, बस इतना ही रखो, बाकी किसी में जाओ नहीं। तुम भटकोगे। तुम सोचो हर घड़ी कि क्या सुने तो मेरी स्थिति ऊंची होगी, क्या बोले तो स्थिति ऊंची होगी, क्या देखे तो स्थिति ऊंची होगी, क्या सोचे तो स्थिति ऊंची होगी, क्या पढ़े तो स्थिति ऊंची होगी। तुम यही सोचते रहो, कैसे बाप की याद और बढ़े, इसका चिंतन करो। बाकी जो तुम्हारे काम का नहीं है, उसका चिंतन नहीं करो और चर्चा भी नहीं करो किसी के साथ। तुम भी भटकोगे और दूसरे को भी भटका दोगे। तुम स्वचिंतन की चर्चा करो खुद से, दूसरों से, समझ की बात है। इसलिए बाप दादा के पार्ट को समझना बच्चों के बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम एक बात को पकड़ के मत बैठो, उन्नति की ओर चलो। तुम जो सोच रहे हो और संकल्प उठा रहे हो, तुम्हारे तन में भी बाबा आ सकते हैं, अगर पार्ट हो तो, सेवा करनी हो तो। और उस समय तुम कहोगे कि मैंने मुरली नहीं चलाई, मैंने क्लास नहीं कराया, मुझे अनुभव हुआ मेरे तन में बाबा बैठे, और कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यही कहने वाला कोई और था, तब तुमने विश्वास नहीं किया। और वो व्यक्ति नहीं कह रहा था, बाबा तुम्हें बता रहा था कि मैं बैठा हूं तुम्हारी उन्नति के लिए, पर तुम समझे नहीं। तुम एक रूप से पकड़ के बैठे और फंस गए। बाबा कहते फंसो, वाह माया माँ वाह, और क्या कहेंगे। अभी वो तुम्हारी माँ है ना, जो तुम्हें मुट्ठी में पकड़ के रखी है, सर्वशक्तिवान है। तो समझ की बात, या तो माया के बच्चे हो तो माँ होगी तुम्हारी, या तो बाप के बच्चे बनो, वाह बाबा वाह करते। किसके साथ चलना है मर्जी तुम्हारी है, समझ की बात है बाबा कहते हैं। इसलिए समझ कर चलो। जहां भी आत्मिक उन्नति हो रही है बाप बैठा है, जहां भी आत्मिक अधोगति हो रही है माया बैठी है। सिंपल सी बात है। फिर ज्ञान कहीं से भी आए, यही अंतर है बाप और माया का। जहां उन्नति वहां बाप, आत्मिक बाहरी उन्नति की बात नहीं कर रहे, अंदरूनी उन्नति की बात चल रही। जहां अधोगति है वहां माया है, जहां तुम्हारी स्थिति नीचे जा रही है माया बैठी है, जहां तुम्हारी स्थिति ऊपर उठ रही है बाप बैठा है। इस दुनिया में स्थिति ऊपर उठाने का अधिकार और शक्ति सिर्फ बाप के पास है, किसी और के पास नहीं है। कोई मनुष्य नहीं उठा सकता तुम्हारी स्थिति को ऊपर। जिसकी खुद की स्थिति ठीक नहीं है वो तुम्हारी स्थिति क्या ठीक करेगा? समझ की बातें बच्चों के लिए, इसलिए समझ कर चलो। इम्पेशेंस नहीं होना, अधीर नहीं होना, समझ कर चलना। बाप को अपना कार्य करना ही है, फिर वो कहां से भी करें, कार्य तो पूरा करना है। समझ की बात है, इसमें तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। तुम बनो ना बनो, बाप तो अपना कार्य पूरा करने वाला है। तुम अष्टरतन में आओ या ना आओ, 108 में आओ या ना आओ, बाप तो 108 अष्टरतन बनाने ही वाला है। तुम्हारे आने या ना आने से वो बनाएगा या ना बनाएगा ये नहीं होगा, उसे अपना कार्य पूरा करना है। तुम्हारे संकल्प उठाने से सूरज उगने का रुकेगा नहीं, सूरज आएगा ही, उसे अपना चक्र पूरा करना ही है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कहीं से कार्य करना, पर तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है कि मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि तुमने तुम्हें नहीं समझा है। समझ की बात है, तुम्हारा बाप पर इतना निश्चय पक्का है कि बाबा कहते मैं दादी के तन द्वारा साकार आवाज में बात करता हूं तो तुम्हें लगता है बाबा नहीं है, ये तुम्हारा निश्चय है। तुम्हारे पास क्या ऐसी ठोस बात है जिससे तुम बता सको कि बाबा है? है कुछ? कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने कभी पढ़ाई की ही नहीं स्वयं की या बाप की। समझ की बात है, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। आवाज पर मत जाओ, चेहरे पर मत जाओ, दृष्टि पर भी मत जाओ, सूक्ष्म में क्या है बताओ तुम्हारे पास जिससे तुम कह सको कि बाप बैठा है सामने? कुछ भी नहीं, क्योंकि कभी तुम सूक्ष्मता में उतरे ही नहीं हो। तुम बस इसके उसके कहने से चल रहे हो, बाहरी दिखावे से चल रहे हो, तुमने कभी बाप का अभ्यास किया ही नहीं है। पता है तुम्हें बाप के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? पता है तुम्हें टीचर के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? पता है तुम्हें सदगुरु या महाकाल के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? कभी जाना नहीं तुमने। वाइब्रेशंस ऐसी चीज है जो इस दुनिया में समान कभी नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट समान नहीं होते, वैसे वाइब्रेशंस कभी समान नहीं हो सकते। बाप एक ही है, लेकिन चार स्वरूप के चार वाइब्रेशंस है बाप के, बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल। तुम क्या जानते हो बाप के बारे में? कुछ भी नहीं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि बाप संगम में आके जाने वाला है अभी, और अभी भी तुम्हें पता नहीं कि बाप कैसा है, टीचर कैसा है। समझ की बात है, तुम बाहरी रूप से परीक्षण कर रहे हो बाप का। बाहर में माया है, बाप को पहचानना है तो अंदर उतरो। तुम जब तुम्हारे अंदर उतरोगे तब तुम्हें बाप पता चलेगा बाप कैसा है, वरना ढूंढते रहोगे और अंत तक मिल नहीं पाओगे। समझ की बातें, बाबा कहते हैं। समझदार बच्चे ही समझ सकते हैं, इसलिए बाप जहां चाहे आता है, अपना पार्ट बजाता है और कार्य करके चला जाता है। जिस प्रकार का कार्य है बाप करता रहता है, बच्चों के बस की बात नहीं है। नारायण को राजगद्दी पर बिठाना ये बाप का काम है, ध्यान में रखना, तुम बच्चों का काम नहीं है। बाप ही राजगद्दी पर बिठाएगा, वो भी कोई सूक्ष्म में नहीं बिठाएगा। सूक्ष्म में बिठाना होता तो नीचे ही नहीं आता, ऊपर से ही सब प्रेरणा से करता और सूक्ष्म में प्रेरणा से ही बिठा देता राजगद्दी पर। अंत तक बाप रहेगा। समझ की बात है, बच्चे समझ नहीं पाते, अपने तर्क वितर्क लगाते रहते हैं और फिर बाप को खो देते हैं। वैसे भी खोने के लिए तुमने पाया ही कब है बाप को? तुम्हें अभी तक बाप मिला ही नहीं है, तुमने बाप को अभी तक देखा ही नहीं है। मिला हो, देखा हो, पाया हो तो खो सकते हो, पर कुछ भी इसमें से हुआ नहीं तुम्हारे साथ। अभी भी तुम वहीं पर हो जहां दुनिया है। बाप को पाने का नशा तुम्हें पागल बना देगा, अगर तुमने बाप को पाया है तो। तुम नॉर्मल नहीं रह सकते अगर तुमने बाप को पाया है तो। तुम नॉर्मल रहते हो संसारी रूप से, इससे सिद्ध होता है कि तुमने बाप को नहीं पाया है। देखिए भक्ति में संतों को, जहां गायन है कि उन्होंने ईश्वर को पाया, उनकी अवस्था को देखिए, उनकी स्थिति को देखिए। भूल गए सारा संसार, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में संसार ही बैठा है। बाप को याद कराने के लिए बाप को कितनी बार कहना पड़ता है तुम्हें कि आत्मा समझ के बाप को याद करो। तुम भी अपने आप को कितनी बार कहते हो तब जाके याद करते हो। और एक संत होके गए जिन्हें संसार में लाने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता था कि आपका घर बार संभालो, परिवार संभालो, फिर भी वो उसी नशे में ईश्वरीय, तुम्हें ईश्वरीय नशे में लाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। तुम चेक करो तुमने कहां तक पाया है। पाने के लक्षण कुछ और होते हैं। जिसने पाया वो संसार से खोया, स्वयं खोया वो संसार से, संसार में ठहर ही नहीं सकता हूं। अगर संसार में ठहरा है मन उसने पाया नहीं है, सिद्ध हो जाता है। और यह एक ही युग है, संगम युग, जहां तुम ईश्वर को, तुम्हारे सच्चे परम पिता को पा सकते हो, बाकी किसी युग में नहीं पा सकते। वहां तो भक्ति चलती है देवताओं के रूप में, वहां तो बाबा अपने सत्य स्वरूप में नहीं आता, भक्ति के स्वरूप में आता है, साक्षात्कार कराता है, चमत्कार कराता है और सबको सही राह पर चलाता रहता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी मुझे बहुत सेवा होती है, बहुत काम होता है। समझ की बात है, इसलिए किसी भी बात को पकड़ के नहीं बैठो बच्चे, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। पकड़ के नहीं रहो, तुम पकड़ के बैठते हो, नुकसान हो जाता है, फिर सोचते हो ऐसे कैसे हुआ। बाबा उत्तर देता है, ड्रामा। और क्या कहे, तुम्हारी गलती थी ये कहे? नहीं, बाबा कहते हैं ड्रामा। ड्रामा अनुसार हुआ, जो होना था। समझ की बातें हैं, बच्चे समझ कर चले। तो जबकि तुम भाषण कर सकते हो, तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है? बाबा कहते हैं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं चला सकता हूं। कभी तुम्हें लगता है किसी तन में बाप दादा आए तो उनका शरीर सहन नहीं कर पाएगा? बाबा कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसे मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए, मेरे कार्य के लिए। सहन करना न करना सब मेरे हाथ में है। मैं किसी भी शरीर को एडजस्ट कर सकता हूं और उसमें प्रवेश होके कार्य कर सकता हूं। ये तुम्हारी मान्यता है। मैंने कौन से मुरली में कहा है कि कोई शरीर सहन नहीं कर सकता? तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत बताओ सभी को, मायावी बातें दुनिया को मत बताओ। मैंने कौन सी मुरली में कहा है वो बताओ कि कोई ब्रेन या कोई शरीर सहन नहीं कर सकता, बताओ कौन सी मुरली है। समझ की बात है। और कभी तुम्हें लगता है कि बाबा पवित्र तन में आते हैं, तुम भूल गए हो बाप के महावाक्य। बाप यही कहता है मैं सबसे अपवित्र तन में आता हूं, जो नंबर वन पावन था वो नंबर वन पतित बना उसी के तन में आता हूं, मैं पवित्र तन में नहीं आता। पवित्र तन में आना होता तो साधु संन्यासियों के तन में आ जाता। इसलिए सारी मान्यताएं तुम बुद्धि से हटा दो। बाबा कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मान्यताओं से, तुम ही नरक में गर्क होते जा रहे हो इन मान्यताओं को क्रिएट करके। इससे अच्छा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, याद में बैठो, अपने को याद करो अच्छे से। ये सारी कहानियों में क्यों जा रहे हो? बाप का पाठ समझने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा। जो 100% आत्मिक स्थिति में है वही बाप के पाठ को समझ सकते हैं, बाकियों के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो 100% आत्मिक स्थिति में है वही बाप की याद में है, और जो बाप की याद में है अखंड वही बाप को समझ पाएंगे, वही श्रीमत पर चल पाएंगे। बाकी बाबा कहते भटकाओ नहीं, तुम भी भटको नहीं और किसी और को भी भटकाओ नहीं। बहुत बच्चे एक दूसरे को भटकाने का काम करते हैं, बाबा कहते ऐसे मत करो, ये सब ड्रामा है। इसमें जो कुछ घटित हो रहा है वो सब कुछ ड्रामा है, इसे ध्यान से समझो। तुम ही कहते हो यहां किसी का कोई दोष नहीं है, फिर तुम ही कहते हो इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे कहा, ये वो कहां से आए फिर? अगर यहां किसी का कोई दोष नहीं तो तुम किसी एक बात पर पक्के रहो, फिर तुम्हारा कल्याण होगा। समझ की बात है, वरना तुम भटकोगे और दूसरों को भी भटकाओगे। बाप को लेकर तर्क वितर्क को नहीं निकालो। समझ की बात है, इसलिए बस श्रीमत पर चलते रहो, बाप के पार्ट में मत जाओ। तुम्हारे समझ से परे हूं मैं, तुम मेरे बारे में एक स्टेटमेंट भी नहीं कर सकते, तुम्हें अधिकार भी नहीं है और उतनी समझ भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि मेरे बारे में तुम स्टेटमेंट कर सको। कोई समझ की बातें हैं। बाप के बारे में स्टेटमेंट करना सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो बहुत बड़ा महापाप बन जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं कहना। इससे अच्छा जो तुम्हारा काम नहीं है वो मत करो। जो तुम्हारा काम है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, वो तुम करो। समझ की बात है। कभी कभी तुम बड़े बड़े क्लासेस करते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, मुरली चलाते हो, बाप से पूछा है तुमने, श्रीमत ली है क्लासेस करने की, प्रोग्राम करने की, मुरली चलाने की, संदेशी के द्वारा श्रीमत ली है क्या तुमने? किसने तुम्हें अधिकार दिया क्लास करने का? किसने अधिकार दिया प्रोग्राम करने का? किसने अधिकार दिया तुम्हें मुरली चलाने का? ये नतीजा है तुम कुछ भी कह रहे हो उसका, अपनी मनमत से चल रहे हो ना। आजकल जिसके मन में आया वो क्लास करना शुरू कर देता है। अधिकार दिया किसने? संदेशी को लेकर तुमने पूछा है सूक्ष्मोतन में कि बाबा हम क्लास कर सकते हैं क्या, मुरली चला सकते हैं क्या, प्रोग्राम कर सकते हैं क्या, प्रदर्शनी समझा सकते हैं क्या? पूछा है तुमने सूक्ष्मोतन में। कहां से ये तुमने सब किया? किसने कहा तुम्हें करने के लिए? ये सब माया है तुम्हारी। बाप तो कहता है बस एक बाप से सुनो, बस एक बाप से सुनो। किसी को मुरली समझ में नहीं आती, बार बार पढ़ो, बाप समझा देगा तुम्हें सूक्ष्म रूप से। पर किसी से समझने की कोशिश मत करो। वहां बाप ने प्रवेश होके समझाया तो ठीक, वरना उसने समझाया और उस मुरली का अर्थ अगर उल्टा पुल्टा निकाल दिया तो तुम भी भटकोगे और वो भी भटकेगा। बाप का कोई भी कार्य बिना श्रीमत के नहीं होता। श्रीमत है तो ही करो, वरना आज के आज, अभी के अभी ये धंधा छोड़ दो, मनमत का, परमत का। समझ की बातें। तुम्हारा एक ही काम है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, रोज की मुरली पढ़ना या सुनना। जो तुम्हें श्रीमत दी है बाबा ने, वही तुम्हारा काम है, वही तुम्हारी सेवा है। इसके बावजूद जो कुछ तुम करना चाहते हो, पहले बाप से श्रीमत लो और फिर करो, अपने मन से मत करो। समझ की बातें। मन मत पर चलने वाले खुद भी गिरते हैं और बहुतों को गिराते हैं। समझ की बात है। किसी से भी तुम क्लास सुनो, सुनने वाले को पूछो, तुमने बाप से श्रीमत ली थी क्या क्लास करने की, मुरली करने की? पूछो उसको। संदेशिया, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, श्रीमत पर चलना है तो मैं हर जगह बैठा हूं। श्रीमत पर चलना है तो। समझ की बात है। पूछो उन्हें, और अगर उन्होंने श्रीमत नहीं ली है तो किसी से भी क्लास नहीं सुनना तुम, और बिना श्रीमत के तुम कभी क्लास नहीं करना। इस बात को ध्यान में रखना। मुंह के बल गिरोगे, जितना कमाया है वह सब खोगे। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। बिना श्रीमत के एक कदम भी नहीं चलना है बच्चों को। और जो श्रीमत पर चलता है उसी के साथ तुम भी चलो। मनमत और परमत पर जो चलते हैं उनके साथ तुम चलोगे, भले बड़े ज्ञानी महाज्ञानी महापंडित होंगे, महायोगी होंगे, लेकिन जो मन्मथ पर चलते वो जरूर गिराएंगे, ध्यान में रखना। मन्मथ और परमथ हमेशा गिराती है, और श्रीमत हमेशा मौज कराती है, आनंद दिलाती है, ऊंचा उठाती है। इसलिए बिना श्रीमत के कुछ नहीं करना। बाप बैठा क्यों है सूक्ष्मोतन में? तुम्हें संदेश ही देने के लिए बैठा है ना, श्रीमत देने के लिए बैठा है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है तो लेते रहो, बिना श्रीमत के नहीं चलना। बहुत बच्चे हैं मन्मथ और परमथ पर चलते हैं, और कोई कोई ऐसे मुश्किल बच्चे हैं जिनकी हर सांस श्रीमत से चलती है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मेरी सांस हैं, जिनकी सांस श्रीमत से चलती है, इन्हीं से मैं सारा कार्य कराता हूं। कहते हैं ना, दम से कार्य किया जाता है, दम माना सांस, सांस दम माना। ऐसे बच्चे ही बाबा का दम है, बाबा की सांस है, जिनसे बाबा विश्व कल्याण का कार्य करता है, जिनकी हर सांस श्रीमत से चलती है। समझ की बात है, जिनके जीवन में जरा भी मन्मत या परमत है, बाबा कहते हैं वो स्वकल्याण भी नहीं कर सकते। विश्व कल्याण तो दूर की बात है, वो तो उनके सपने में भी नहीं आ सकता विश्व कल्याण। इसलिए बाबा कहते हैं समझ कर चलो, भटको नहीं। भटकना और तेज हो रहा है अभी के समय में, क्योंकि माया की शक्ति और बढ़ती जा रही है, माया का राज्य पूरा होने जा रहा है। जैसे राज्य पूरा होने जा रहा है, शक्ति और बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहते हैं इस समय भटको नहीं। भटकाने वाली बहुत बातें आएंगी, पर भटकना नहीं है, चलते रहना है श्रीमत पर, एक कदम भी इधर उधर ना हो। दिया बुझने से पहले बहुत तेज जलता है, ध्यान रखना। ये माया का राज्य है, समाप्त होने से पहले निगेटिव एनर्जी का खेल बहुत तेज चलेगा, कल्पना से बाहर चलेगा। इसलिए तुम श्रीमत को इतना पक्का करो, तुम्हारे पास तो छोड़ दो, तुम जहां भी जाओ वहां की भी नेगेटिव एनर्जी, उसको भी मुक्ति मिले, भटकने वाली आत्माओं को मुक्ति मिले, बेचारे परेशान हैं। इतने शक्तिशाली तुम बनो श्रीमत पर चलकर, उपाय एक ही है श्रीमत, इतना शक्तिशाली बनने का। इसलिए चलते रहो, सदा श्रीमत को ध्यान में रखना, सदा श्रीमत को ध्यान में रखना, हमेशा श्रीमत आगे पीछे ना हो कभी, सदा ध्यान में रहे बस बच्चों के। बाबा कहते काम हुआ, श्रीमत ध्यान में है, कार्य पूरा हुआ। श्रीमत कभी खोए नहीं, कभी भूले नहीं। तो बहुत सारी जगहों पर बाबा अपना कार्य कर रहा है, यह इतना विशाल कार्य है कि एक जगह से करना बाबा कहते पॉसिबल नहीं है। मैं अनेक जगहों से इस कार्य को पूरा कर रहा हूं, अध्यात्म भी मैं ही चला रहा हूं और विज्ञान भी मैं ही चला रहा हूं, सब जगहों से मैं ये कार्य कर रहा हूं। समझ की बात है, बस बच्चों के लिए बाप के रूप में कर रहा हूं, दुनिया के लिए भगवान के रूप में कर रहा हूं, विज्ञान के लिए गॉड के रूप में, क्रिएटर के रूप में कर रहा हूं, पर मैं सब जगहों से कर रहा हूं। तुम एक जगह मुझे पकड़ के मत रखो, मैं किसी की पकड़ में नहीं आता। तुम अगर एक जगह पकड़ के बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि माया ने पकड़ ली है, ये समझ जाना। समझ की बात है। इसलिए अनेक जगहों से बाबा कार्य कर रहा है, तो किसी भी तन द्वारा बाप मुरली चला सकता है, बाप दादा मुरली चला सकते हैं, ध्यान में रखना। अगर कोई बिलीफ सिस्टम हो पुरानी, उसे हटा देना। इस संगम युग में विश्व कल्याण और स्व कल्याण की दिशा में, सतयुग की दिशा में जो भी कार्य जा रहा है, जिस भी आत्मा के द्वारा जा रहा है, बाप ही कर रहा है, बस इसे ध्यान में रखना। स्व कल्याण करना, विश्व कल्याण करना, सतयुग लाना, ये सिर्फ बाप का काम है। इसलिए कभी किसी मनुष्य को क्रेडिट नहीं देना तुम, इन्होंने बहुत सुंदर क्लास कराया, बाप ने किया। इन्होंने बहुत सुंदर मुरली चलाई, बाप ने चलाई। इन्होंने कितना विशाल कार्य किया, जिससे यज्ञ का कार्य कितना आगे बढ़ रहा है, उन्होंने नहीं किया, बाप ने किया। सब बाप ही करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं करण करावन हार बैठा हूं, तुम बस नाम के निमित्त हो, नाम के करता मैं ही हूं, सारी क्रेडिट तुम्हें देता हूं। समझ की बात है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी मैं ही करता हूं, ध्यान में रखना। बाबा कहते हैं, तुम यहां तक भी पात्र नहीं हो कि पुरुषार्थ कर सको। तुम्हारा पुरुषार्थ भी तुम्हारे द्वारा मैं ही करता हूं और तुम्हें ऊंच पद दिलाता हूं। इसलिए अहंकार में नहीं आना, माया में नहीं आना कि मैं करता हूं कभी कह के। सब करने वाला बाप है, ध्यान में रखना हमेशा। सब कुछ पॉसिबल है बाप के लिए, बस तुम जानते नहीं हो। तुम अपने आप को नहीं जानते हो, बाप को कहाँ जानोगे और कार्य कब जानोगे। इसलिए बस चलते रहना, श्रीमत को ध्यान में रखना और चलते रहना। बाप करण करावनहार बैठा है, तुम बस निमित्त चलना। बाबा कहते मैं बहुत कुछ कराऊंगा, करूंगा, बस निमित्तपन लेना। कभी कोई तुम्हें क्रेडिट देने की कोशिश करे ना, वहां से भाग जाना, ठहरना नहीं। तुमने जो नहीं किया उसकी क्रेडिट तुम कैसे ले सकते हो, उसका बड़प्पन तुम कैसे ले सकते हो जो तुमने किया ही नहीं है, गिर जाओगे। इसलिए ये चेष्टा नहीं करना, ये अज्ञानता, मूढ़ता, मूर्खता नहीं करना क्रेडिट लेने की। किसी ने ताली भी बजाई, लेना नहीं। कभी किसी ने तुम्हारे कार्य के लिए फूल दिया, लेना नहीं। कहना वही एक रुपए का जो फूल है, वो एक रुपया बाप की भंडारी में डालना, यज्ञ सेवा में लगाना, तुम्हारा भी भला होगा और यज्ञ सेवा भी आगे बढ़ेगी। समझ की बात है। और तुम सभी बच्चे जो किसी और की वाहवा करते हो, उसकी भी वाहवा कभी नहीं करना, किसी बच्चे की। उस बच्चे की मैं तुम्हें कुंडली दिखाऊं ना, तो गाली दोगे उससे। इसलिए महिमा सिर्फ एक बाप की है इस दुनिया में, ध्यान में रखना। किसी मनुष्य की कभी महिमा नहीं करना, गिर जाओगे। कभी किसी मनुष्य की नहीं करना, वो भी गिरेगा और तुम भी गिरोगे। अरे करना ही है ना, महिमा करने का शौक है तो परमात्मा की करो, बाप की करो, ऊंचा उठोगे, अवस्था ऊंची होगी। और ही करने का मन है परमात्मा छोड़ के, तो ड्रामा की करो, वाह ड्रामा वाह करो, मन है ना। समझ की बात है। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं ईश्वर के लिए इस दुनिया में। ध्यान में रखना, ड्रामा में बंधा हुआ भी है और ड्रामा से मुक्त भी है वो। बस ध्यान में रखना। इसलिए सब कुछ उसके लिए पॉसिबल है तुम उसके पार्ट में मत जाओ, तुम अपनी उन्नति के बारे में सोचो, आत्मिक स्थिति के बारे में सोचो और राजयोग के बारे में सोचो। श्रीमत पर चलते रहो, अपना ध्यान रखना श्रीमत को लेकर। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। श्रीमत पर सदा चलते रहना, श्रीमत को सदा सर आँखों पर रखना। तुम आत्मा से भी ऊंच श्रीमत रहे हमेशा। अच्छा, ओ शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।
पदम